राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरि। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरि। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बन चारी। तीरा बन राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज हंस पै व्राज कचारी अष्टोदर्थश्री श्रीमधीश वाइनग्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रभुस्कोन फाउंडर आचार्य श्री विहूलवर्ण जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सरथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। तो आज राधाष्टमी के अवसर पर हम श्रवण करेंगे कुछ विशेष लीला श्रीमती राधा रानी से जो संबंधित है, और कुछ ऐसी घटना जो कि सामान्य रूप से लोग नहीं जानते हैं। भगवान कृष्ण ने जब तो भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा आते हैं, मथुरा से फिर द्वारका आते हैं और द्वारका में महाराज उग्रसेन का अश्वमेध यज्ञ होता है। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे अनिरुद्ध जी चलते हैं यादवों की सेना के साथ, और वो घोड़ा अनेक अनेक स्थानों में जाता है और अनेक अनेक राजा उस घोड़े को पकड़ते हैं, और अनिरुद्ध जी युद्ध करके उन राजाओं पर विजय प्राप्त करते हैं और घोड़े को फिर छीनते हैं। इस प्रकार से घोड़ा अपनी इच्छा से विचरण करता हुआ ब्रजमंडल में पहुंचता है, और नंद महाराज जो है उस घोड़े को जब देखते हैं, उसके माथे में जो पत्र लिखा हुआ है उसको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस घोड़े के साथ तो भगवान कृष्ण भी हैं। तो उस घोड़े को आदर पूर्वक पकड़ के बांध लेते हैं और इंतजार करते हैं कि अब कृष्ण और उनकी सेना यहाँ आएगी और कृष्ण का दर्शन होगा। तो फिर कृष्ण जो है सब यादवों की सेना के साथ ब्रजमंडल में पहुँचते हैं और कृष्ण का स्वागत होता है और नंद महाराज और यशोदा कृष्ण का दर्शन करते हैं। नंद के महल में कृष्ण ठहरते हैं सब यदुवंशियों के साथ और अब राधा कृष्ण का मिलन हुआ 100 साल के बाद। तो अब सायंकाल की घटना है। सायंकाल के समय राधा रानी ने कृष्ण जी को बुलवाया। कहां पर बुलाया? राधा रानी कहां रहती हैं? एक शीतल कदली वन में रहती हैं। तो राधा रानी ने बुलवाया कृष्ण को और कृष्ण राधा के पास गए। आहुतो राधया कृष्णाम संध्यायाम नंद नंदन जगाम सस्वधे कांते शीतलम कदली वलम। उस कदली वन में केले के पत्तों का एक घर बना हुआ था। आप सुनिए ध्यान से, राधा रानी कृष्ण के वियोग में 100 साल कैसे बिताती है? केले के पत्तों का एक घर बना हुआ है, उसमें चंदन का छिड़काव किया गया है, चारों ओर जल के कण झर रहे थे और यमुना जल से मिश्रित पवन के झोंके चल रहे थे उस कदली वन में। रंभा दले चंदन से पंक्तियुक्तम मनोहरम स्फुरास्फुरन अभ्रगेहम यमुना वायु शीकरम। ऐसा सुंदर राधा का मेघ मंदिर था। मेघ मंदिर समझते हैं? मेघ जिसमें पानी की वर्षा करते रहे, पानी की बूंदें गिरती रहे शीतल करने के लिए, तो वो मेघ मंदिर था राधा रानी का। किंतु श्री कृष्ण के विरह के दुख की अग्नि से वो सारा भस्मीभूत प्रतीत होता था। इतनी ठंडक, लेकिन वो कैसा जल रहा है मानो। क्यों? राधा रानी की विरह की अग्नि से वो पूरा जल रहा है। इतनी पानी की फुहारें पड़ रही हैं, लेकिन तो भी कैसा लग रहा है कि एकदम जैसे जला हुआ जैसा मालूम पड़ता है। एतादृशं राधिकाया सुंदरम मेघ मंदिरम सर्वं दुखाग्निना नित्यं भस्मीभूतं बभूवः। वृषभानु नंदिनी राधा उसी मेघ मंदिर में श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई श्री दामा के साप से अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। कृष्ण आएंगे इस कारण से अपने जीवन की रक्षा कर रही हैं राधा रानी, इस आशा में कि कृष्ण का आगमन होगा। श्री दाम सापे नृप दुखे न वृषभानु जाम तनुम रक्षते तत्रापि कृष्णागमन हेतवे। जब राधा ने सखियों से सुना कि श्री कृष्ण आ गए हैं, कहां? कदली वन में, तो आसन से उठ पड़ी और सखियों को साथ लेकर शीघ्र उनका स्वागत करने के लिए मंदिर के द्वार पर आई। निसम्य कृष्णम स्वने समागतम सखी मुखाश्री वृषभानु नंदिनी आने तुम उत्थाए वरासनात्वरम द्वारे सखी भिन्नपसा जगामह। तत्काल ब्रजेश्वरी राधा ने उन्हें आसन पर बिठाया और कुशल क्षेम पूछा, पूजन किया कृष्ण का और कुशल क्षेम पूछा। परिपूर्णतम श्री कृष्ण को देखकर परिपूर्णतमा राधा ने अपनी विरह व्यथा दूर की और उनके समागम से निहाल हो गई। तदोह्या समय पाद्याद्यां उपचारान ब्रजेश्वरी वदंती कुशलम वाक्यम कृष्णा कृष्णम ब्रजेश्वरम। परिपूर्णतमं दृष्ट्वा परिपूर्णतमान् जवो विरहजं दुःखं संयोगे हर्ष पूरितां। फिर राधा रानी ने श्रृंगार किया। देखो 100 साल के बाद श्रृंगार किया राधा रानी ने। 100 साल तक कृष्ण के विरह में श्रृंगार नहीं किया था, विविध वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार किया, क्योंकि जब भगवान मथुरा से द्वारका गए थे तब से उन्होंने सभी श्रृंगार त्याग दिए थे। चकार तस्या श्रृंगारम वस्त्रालंकार चंदन कुशस्थल्याम गते नाथे श्रृंगारो ना कृतस्तयाम। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए उस दिन से राधा ने क्या नहीं किया, पान नहीं खाया ना मिष्टान्न का भोजन किया, समझ रहे, मिठाई राधा रानी ने मिष्टान्न भोजन नहीं किया, ना कभी सैया पर सोई है, और तब से कभी हंसी भी नहीं। देखो ये है पतिव्रता। पुरा तया न भुक्तम चा तांबूलम मिष्ट भोजनम कृतम न सैया शयनम कुचिन्हास्यम न वा कृतम। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन श्री कृष्ण को देखकर हर्ष के आंसू बहाती हुई राधा गदगद वाणी में बोली। राधा ने कहा, हे ऋषिकेश, गोकुल और मथुरा त्याग कर आप द्वारका क्यों चले गए, ये मुझे बतलाइए। आप तो साक्षात गोकुलेश्वर है ना, आपको गोकुलेश्वर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोकुलेश्वर, तो आपने गोकुल छोड़ करके द्वारका क्यों गए। सिंहासने स्थितं राधा देवं मदन मोहनम हर्ताश्रोणी समुञ्चन्ति जगो गंगदया गिराम गोकुलम मथुराम त्यक्त्वा गता कस्मात् कुतस्थली मद तन्मे ऋषिकेश त्वं साक्षां गोकुलेश्वरम। अब देखो राधा रानी क्या कहती हैं, हे नाथ, आपके वियोग में मेरा एक क्षण कैसा लगता है, युग के समान। आपके वियोग में एक क्षण कैसा लगता है, युग के समान। एक घड़ी मनमंतर के समान लगती है, एक घड़ी यानी 24 मिनट मनमंतर के समान 30 करोड़ साल लगता है, है? और दिन द्विपरार्ध जैसा लगता है, एक दिन द्विपरार्ध ब्रह्मा की आयु जैसा लगता है, है? 31 नील और 10 खरब 40 अरब वर्ष, एक दिन इतना बड़ा लगता है। हाय, किस कुसमय में मुझे आपका दुखदायी वियोग प्राप्त हुआ था, जिसके कारण मुझे आपके सुखदायक चरणों का दर्शन नहीं मिला। क्षणम योगे समम नाथ है जानामी तन्वियोगतः घटी मन्मंतर समाम द्विपरार्ध समम दिनम कस्मिन् कुकाले विरहोमि अभूवाच दुःखदः येन त्वच्चरणौ देव न पश्यामि सुखप्रदम्। जैसे श्री राम को सीता और मान सरोवर की हंसनी हंस को चाहती है, उसी प्रकार आप राशेश्वर को मैं चाहती हूँ। यथा रामम तो सीते वे मानसम बरटे चाम तथा राशेश्वरम ताम तो मानदम हे समुत्सहे। आप सर्वज्ञ हो, अतएव सब कुछ जानते हो, तब मैं अपना दुख आपको कैसे बताऊं। हे नाथ, 100 वर्ष बीत गए पर मेरा वियोग दुख दूर नहीं हुआ। सर्वं जानाति सर्वज्ञ किं दुःखं कथयाम्यहं सत्वर्षं गतं नाथ वियोगो न गतो मम। अपने स्वामी श्री कृष्ण से ये कहकर वियोग के दुख में डूबी हुई ब्रज स्वामिनी राधा बीते दुखों का स्मरण करके रोने लगी। इत्युक्त्वा वचनं राजन् स्वामिनी स्वामिनं परम वियोग खिन्ना दुखानि स्मरन्ति सारोरोदः। अपनी प्रीतमा राधा को रोती देख भगवान प्रिय वचन बोले। ऐसा करके वे राधा के दुख को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, इस प्रकार शरीर सुखाने वाला शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋषि लोग जानते हैं कि हमारा और तुम्हारा तेज एकाकार होकर के दो रूपों में दृष्टिगोचर होता है, वास्तव में दो है नहीं। दृष्ट्वा प्रियां मृदन्ती ताम प्रिया प्राह प्रियं वच तस्याश्च समयन वाक्य कृष्णा कस्मन् मे विच न कर्तव्यं त्वया राधे शोकच्चां तनुशोचकम् तेजश्चैकं दधा भूतम् आवयो ऋषयो विदुः। हे प्रिय, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ही तुम भी रहती हो। जैसे प्रकृति और पुरुष का वियोग नहीं होता, वैसे ही मेरा और तुम्हारा वियोग कभी नहीं होता। जो नराधम हम दोनों में भेद देखते हैं, वे अपने इस दोष से शरीर त्यागने पर नरक में जाते हैं। अब से तुम मुझे सदा अपने पास ही देखोगी। जैसे प्रातः काल के समय चकवी अपने प्यारे चकवे को अपने पास देखती है, हे प्रिय, कुछ ही समय बाद तुम्हें तथा गोपों और गोपियों को अपने साथ लेकर मैं अक्षर ब्रह्म स्थान गोलोक धाम चला जाऊंगा। किंचिन कालेन दैते गोप गोपी भिरे साकम त्वयाक्षरम ब्रह्म श्री गोलोकम व्रजाम्यहम्। श्री कृष्ण के वचन सुनकर गोपियों के साथ राधा बहुत प्रसन्न हुई और भगवान का इस प्रकार पूजन किया जैसे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का पूजन करती है। बाद में राधा ने रास लीला करने के लिए अनुरोध किया। देखा ये रास लीला, तो भगवान भी वृंदावन में रास रचाने के लिए राजी हो गए। माधवस्य वचः श्रुत्वा गोपी भी सह राधिका प्रसन्ना पूजया मातः रमेशं च रमयथां श्री राधया पुनः कृष्णो रासार्थं प्रार्थितो नृप प्रसन्नो वृंदकारण्ये रासं कर्तुं मनोदधे। अब गर्ग जी राजा को सुना रहे, राजा प्रतिबाहु को सुना रहे हैं कथा। हे राजन, हेमंत ऋतु के प्रथम मास यानी कार्तिक की पूर्णिमा को राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी लोक बस करी, बंसी बजाई। उसी प्रकार इस समय भी उन्होंने अपनी बंसी बजाई। जैसे पहले हेमंत के प्रथम महीने में बंसी बजाई थी, उसी प्रकार बंसी बजाई। हेमंते मासि पूर्वस्मिन् राकायां राधिकेश्वर बंसी बस करी दधमाओ यथा वृंदावने पुरा। सबका मन हरण करने वाली बंसी की ध्वनि सुनकर गोपियां काम के आवेग से त्रस्त हो उठी। उस बंसी की ध्वनि से समुद्र का वेग रुक गया। बंसी का देखो कमाल क्या है, समुद्र का वेग रुक गया। आकाश में विविध चमत्कार दिखने लगे। सनक आदि मुनियों का ध्यान भंग हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी उत्कंठा से नाना प्रकार की पूजा देने वाले राजा बलि चंचल हो गए और शेष नाग कांपने लगे। इस प्रकार जैसे समस्त ब्रह्मांड कटाह को वह बंसी ध्वनि छिन्न भिन्न करने लगी। धुनिर्बभूवत सर्वेतां महरन मनः निसम्य गोपा संखिन्ना काम खेदेन तत्प्रसुः रुन्धन्नम् उभृतश्च मत्कृतिपरम् कुर्वन् मोहस्त्वम्बरम् ध्यानांगत नयनं सनंदन मुखान विस्मेरयन वेधसम असुख्यान बलिभिर्बलम चटिलयन भोगेन्द्र मागुर्णयन भिन्नंदन कटाय भित्तिम अभितो बभ्रामे बंसी ध्वनि। इसी समय चंद्रमा का उदय हुआ और उसी अवसर पर यमुना ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार वृंदावन गोवर्धन और समस्त ब्रज भूमि ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय उच्च कोटि के मणियों मोती माणिक हीरा और पन्ना जटित परकोटों और वैदूर्य नीलमणि हीरे और पन्ना की सीढ़ियों वाले मणि मंडपों से जगमगाती हुई यमुना बहुत ही सुंदर लग रही थी। कृष्णा नदी जयति यत्र मणिन्द्र मुक्ता माणिक्य सुम्र हरिता कर तोलिका भी वैदूर्य नीलक हरिन हरिवंद्र पीतन सोपान मंडपयुता भी स्फुरंती। स्वेच्छा से उछलते मत्स्यों से संपन्न ऊंची ऊंची चंदल तरंगों और विविध प्रकार के कमलों से भरी पूरी अपने श्यामल शरीर से पापी प्राणियों के पाप हरती हुई यमुना मंथर गति से बह रही थी। स्वच्छंद सुस्पतित मत्स्य गण वहंती सच्यामलेन वपुसांग गणम हरंती उत्तुंग लोल लहरी कमलेर लसंती कृष्णा नयति जियति कृष्ण गृहे लुठंती। अब गोवर्धन पर्वत कैसा है? उस गोवर्धन पर्वत का भजन करो जिस पर 100 चंद्रमा का प्रकाश विद्यमान है, जहां मंदार चंदन और कल्प वृक्षों के जंगल हैं, जहां मणि मंडपों से अलंकृत अनेक रास मंडल हैं और जहां निकुंज कुटियों विद्यमान हैं। गोवर्धन भज गिरिम सतचंद्र युक्तम मंदार चंदन लतामृत कल्प वृक्षम श्रीरास मंडल युतम मणिमंडपाढ़्यम कोटीर मंजुल निकुंज कुटीर कोटिम। यमुना जी के तट पर जल से सटा शीतल मंद सुगंध युक्त वायु और चंदन केसर के पंख से अनुलिप्त होने से सारा प्रदेश परम सुगंधित हो गया। ऐसा वृंदावन धन्य है। वृंदावनम च यमुना तट नीर तीर समृत मंद गमने प्रति गंध माते तत्कंपितम तसुरभि कृत सर्वदेशम श्रीखंड कुंकुम मृदा गुरु चर्चितम तम। जहां बसंत कालीन नव पल्लवों और पुष्पों से मंदार चंदन चंपा कदंब नीम आमड़ा आम कटहर नारंगी ताल पीपल बट नारियल खजूर बेल लौंग अंजीर साल तमाल कदंब कल्प वृक्ष कुंदबेर केला सेमर मौलश्री केतकी तथा सिरस वृक्षों से संपन्न वृंदावन था। जुष्टम बसंत नव पल्लव पुष्प रंग मंदार चंदन सुचंपक नीप निम्ब आम्रात काम्रपनसा गुरु नाग रंग श्रीताल पिप्पल बटैर नव नारी केल खरजूर श्रीफल लवंग विराजमान मंजीर साल कतमाल कदम युक्तम संतान कुंद बदरी कदली चाट्यम श्री साल मली बकुल केत केतके सच्छरीशम। इसके बाद निकुंज कैसा है? वृंदावन में निकुंज कैसा है? उसमें पुखराज मणि से निर्मित शिखरों वाला एक निकुंज भवन है, जिसमें कौस्तुभ मणि और इंद्रनील मणि की पच्ची कारी की गई है। वो करोड़ों चंद्र मंडल के सदस्य चंदुओं सुनहले काम के वस्त्रों और मणि जटित तोरणों से सदा अलंकृत रहता है। श्रीपद मैराग शिखरम च निकुंज गेहम श्री कौस्तभेन्द्र मणिराज विराजमानम कोटिंदु मंडल विशाल गण सहम श्रीपट सूत्र रति सैर मणितोरणाढ़्यम। मोतियों के झालरों युक्त सोने की पीली पताकाएं वहां सदा फहराती रहती हैं। अनेक जाति के कबूतर और हंस जैसे श्वेत पक्षी जहां सदा विद्यमान रहते हैं। मंदार कुंद करीर जूही और नवीन चंपा की माला से वह सदा अलंकृत रहता है। मुक्ता व्रत कनक पीत पतत पताके पारावत सत पतत्र भीरावृतम चा मंदार कुंद कर वीर कयूथिका नाम माला विचित रचितम नव पंकचानाम। उस निकुंज भवन में जाकर
भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बंसी बजाई तब समस्त ब्रजबालाएं वह वेणु गीत सुनते ही सारा काम काज छोड़कर दौड़ पड़ी, क्योंकि बंसी की मधुर ध्वनि सुनाकर श्री कृष्ण ने उनका मन हर लिया था। श्री वेणु गीतम बहु काम वरधनम निशम्य शर्मा गज जोषितो नृप श्री कृष्ण कांते न गृहीत मानसा विसृज्य कर्माणि समययुर्वने। उनमें से जिन गोपियों ने उनके पतियों जिन गोपियों को उनके पतियों ने रोक लिया था, ये अपना स्थूल शरीर पतियों के पास छोड़कर सूक्ष्म देह से अति शीघ्र श्री कृष्ण के पास दौड़ आई। सुनहले काम के वस्त्र जिस पर बिछे थे उस सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण तथा सुंदरी राधिका के गले में मालती की माला सोह रही थी। रुद्धाया पतिभि राजन कृष्णेन हृत मानसा स्थूलम शरीरम तां त्यक्त्वा त्वरं कृष्णान्तिकं ययुम् सिंहासने हेम दुकूल संयुति मध्यस्थितं सुंदर नंद नंदनम श्री सुंदरी राधिकया समं परम गले दधानम मधुमालती ब्रजम। उस समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रातः काल के सूर्य के समान चमकीला मुकुट पहने हुए थे। उनकी कांति चारों ओर फैल रही थी। उनकी मुरली उनके हाथ में विराज रही थी। वे मनोहर पीतांबर पहने हुए अपने अपार सौंदर्य से असीमित कामदेवों का मन मत रहे थे। ऐसे भगवान को ब्रज सुंदरियों ने देखा। श्यामं प्रभातार्क किरीटिनं हरिं स्फुरत प्रभं त्रिमुरली मनोहरम पीतांबरम मन्मथ राशि मोहनम ब्रजस्त्रियस्तं ददृशो समागतम। भगवान के कुंडल कैसे हैं? मत्स्य की आकृति के हैं, मछली की आकृति के कुंडल हैं। ब्रजबालाएं उनको देख करके मूर्छित हो गईं। जब भगवान ने मीठी वाणी से उन्हें सांत्वना दी तब वे होश में आईं। तब गोपियों ने गदगद वाणी से उनकी स्तुति की और अपना वियोग जने दुख दूर करके उन्होंने अपने प्रिय गोविंद को देखा। दृष्टा प्रिया प्रियतमम मत्स्य कुंडलिनम हरिम गोप्यो मूर्छाम गता संद्यो भूय चा लक्षितोद्यमाम सांत्वयामास ता कृष्णो मिष्टिमा के सुधा समय तदा गोप्यो वनो देशे सर्वा चैतन्यताम गताम। मंद मंद हंसते हुए प्रभु वहां से चलकर यमुना के तट पर पधारे। मालती वन से व्याप्त वृंदावन में भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहां भगवान मदन मोहन अपने कर कमल से राधा का कर कमल पकड़कर धीरे धीरे बिचरने लगे और यमुना के तट पर आए, फिर तटवर्ती निकुंज में आ गए। विचार हरे साक्षात देवो मदन मोहन पद्माभम पद्महस्तेन गृहीत्वा राधिका करम प्रसन्न भगवान साक्षात आयो यमुना तटम कृष्णा तीरे निकुंजे वे श्री कृष्णो निसादह। हाँ, उस निकुंज में श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण और नूपुरों की झंकार और कंकणों की रुंझुन करती और रत्नमयी करधनी कमर में पहने गोपियों के कुछ भेद बता रहा हूं, इनको सुनो। तस्मिन् गृहे मधुपते श्रृणु गोपिकानां श्री कृष्ण चंद्र चरण स्मरणामृतानां झंकार नूपुर झणत कर कंकणानां मंजीरे रत्न विलचन कड़ी कटि किंकिणीनां। मंद मंद हास्य के साथ चमकते हुए कपोलों और शोभा से युक्त दंत पंक्ति से शोभित बिजली के समान सखियों के बेसों और सुवर्ण के हार एवं बाजू बंद से भूषित प्रातःकालीन सूर्य के समान कुंडलों से विभूषित उन गोपियों में से कुछ गोपियां मुग्धा थीं, कुछ तरुणी और कुछ मध्या थीं। उनमें से कोई सखी वृक्ष को झुका रही थी, कोई हंस रही थी और कोई मदमत्ता सखी वन में विचर रही थी। स्मेर जुति स्फुट चमत्कृत गणदेश श्री दंध पंक्ति विलसन तड़िता निलेश कोटीर हार हरिताम गदभूषिता नाम बालार्घ्य मंडल विकुंडल मंडिता नाम तासाम दुकापि युवती कथिता च मुग्धा मंद्यापि कापि तरुणी रुचिरा प्रगल्भा काचित् तरुं विनयति मधुरं हसन्ति काचित् सखी मदयुता सुवने व्रजन्ति।
तभी कोई सखी किसी अन्य सखी को एक धौल जमाकर भागी, कोई जल में स्नान करते हुए सखी को पकड़कर कमल पुष्प से मारने लगी, किसी ने किसी सखी के ढीले हार को ले लिया, कोई सखी बिहार में मग्न रहने के कारण अपने उलझे बालों को भी सुलझा रही थी।
संताड़ताम पिकरण दुकाप्य धावन संग्रह काप्य भुवने कमलेर जगान काचिन प्रथम कनक हार मुजहारे काचित प्रमुक्त कबरे तो विहार मत्ता।
आगे बहुत से यूथों का वर्णन हुआ है। अब कुछ गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करके नाच रही हैं, समझिए श्री कृष्ण का ही रूप धारण कर लिया है और नाच रहे हैं गोपियां। कुछ गोपियां वीणा, कुछ मधुर ताल और मृदंग लिए हैं, कुछ सखियों ने श्रृंगार करके बाजू बंद पहन रखा है, श्री राधिका हाथ में बंसी लिए हैं, कुछ सखियां हाथ में मणि जटित बेत्र लिए हैं।
नृत्यन्ति तत्र हरि वेश धरा सुकाचिन वीणा करा मधुर ताल मृदंग हस्ता बंसी धरा से वृषभान सुता सुवेता केयूर कुंडल युता मणि बेत्र हस्ता।
यमुना तटवर्ती उस निकुंज भवन में विहार करके श्याम सुंदर बंसी बट्ट होते हुए श्री राधा के साथ कहां पर आए, गोवर्धन पर्वत पर जाकर विचरने लगे। उस समय वे नटवर वेश धारण किए हुए थे। ऐसे नंद नंदन का स्मरण करिए।
तस्मिन् निकुंज भवने यमुना तटेपि बंसी बटे वन धरा निकटे हरिंतम श्री राधयात गिरिराज तटम व्रजंतम नन्नात्मजम च नटवेश धरम स्मर त्वम।
जिन चरण कमलों के नख पुखराज मणि के समान देदीप्यमान हैं, जिनसे नूपुरों की झंकार निकल रही है और जिनके प्रत्येक अंग फड़क रहे हैं, उन श्री चरणों से भूमि भाग को लाल करते हुए वे इधर उधर विचरने लगे।
श्रीपद मेराग नख दीप्ति पदार बिंदम झंकार अनु श्रीपद मेराग नख दीप्ति पदार बिंदम झंकार अनुपुर धरम स्फुर दंग देशम कुर्वंत मेव सुपदारुण भूमि देशम श्रीमत् पराग सुर चाल मित सतस्तु।
शंख के समान सुंदर उनका कंठ था, सुंदर कपोल कुछ निम्न चिबुक है, कुंद कली के समान दंत पंक्ति बिंब फल जैसे ओठ है, मंद मुस्कान युक्त मुख तोते की चोंच जैसी नासिका अमृत जैसी मीठी वाणी और चंचल कटाक्ष से भगवान संपन्न थे।
श्री कम्बुकंठ ललितम विलसत कपोलम मध्यम तु निम्न चिबुकम किल कुंद दंतम बिंबाधरम निस्मितल सुगचंचुनाथम पीयूष कल्प वचनम प्रचलत कटाक्षम।
अब राधा रानी का कैसा रूप है, सोने की जुति और यमुना जल से संस्पृष्ट वायु से कल्पित सूक्ष्म नीलांबर धारणी गौरवर्णा और मंद मुस्कान युक्त राधेश्वरी राधा रानी का भजन करिए।
नीलांबर कनक रश्मि तट स्फुरंदी श्री भानुजा तट मरुंगति चंचलांग सूक्ष्म स्वरूप ललित रति गौर वर्णाम रातेश्वरी भज मनोहर मंद हासाम।
राधा रानी चूड़ामणि की दीप्ति से वेदीप्यमान है। अर्धचंद्र और अनेक गले के आभूषणों से विचित्र रूपवती श्री पट्ट सूत्र और मणिपट्ट से हिलती हुई दुलिरी पहने हैं और दमकते हजार के दल कमल को धारण किए भगवती राधिका को भजिए। चूड़ामणि दुतिल स्फुर दरद चंद्र ग्रैवे कालपन पत्र विचित्र रूपा श्री पट्ट सूत्र मणिपट्ट चलंदि दामनी स्फूर्जन सहस्र दल पन्न धरम भजस्व। जिनकी स्त्री संपन्न भुजाओं में कंकण सुशोभित हैं, जिनके स्तनों पर रत्नों का प्रकाश पड़ रहा है, नासिका में पड़े नक बेसर की कांति से जिनके कपोल दमक रहे हैं, उभरे हुए यौवन से जिनकी गति मंद पड़ गई है, काली नागिन के समान मनोहर बेणी एवं सायंकालीन चंद्रमा के समान मुख और नव विकसित चंपक पुष्प के समान अंग वाली राधा रानी को भजिए। श्री बाहु कंकण लसन कुछ रत्न दीप्ति श्री नासिका भरण भूत गण देशा सद्यो बना लसद गतिम कल सर्प बेणी मध्यन्दु कोटि बदनाम स्फुट चंपका भाम। उन श्री कृष्ण का भजन करिए। क्षेत्रज्ञ आदि पुरुष अधियज्ञ स्वरूप सर्वेश्वर समस्त कारणों के भी कारण श्री कृष्ण हरि प्रकृति पुरुष इन दोनों में पुरुष स्वरूप अपने तेज से सत्तेजों को निस्तेज करने वाले जिन्हें शिवजी धर्मराज इंद्र शेषनाग गणेश और सभी देवता राधा रमा प्रकृति भूदेवी बिरजा सरस्वती और चारों वेद भजते हैं उन्हीं श्री कृष्ण का भजन हम भी करते हैं। क्षेत्रज्ञमादि पुरुषम स्वधियज्ञ रूपम सर्वेश्वरम सकल कारण कारणेशम कृष्णम हरिम प्रकृति पुरुषयोपमानतम सर्वम निरस्त कपटम निज तेजते है यम वैस्तवंति शिव धर्म सुरेश शेष लोकेश चिंतित गणेश सुरादयोपी राधा रमा प्रकृति भू विरजा स्वराद्या वेदा भजन्ति सततम तमहम भजामि। आगे चल के क्या होता है कि जब गोपियों को मान होता है तो भगवान क्या करते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, रासलीला में अंतर्धान हो जाते हैं, राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गए भगवान। तो उन माननीय गोपियों के मान को देख करके जगतपति भगवान श्री कृष्ण राधा को लेकर अंतर्धान हो गए। तो फिर क्या है, गोपियों का अभिमान हुआ, एक निर्धन मनुष्य भी धन पाकर अभिमानी बन जाता है, तब जिनकी को स्वयं भगवान प्राप्त हो गए उन ब्रज बालाओं के अभिमान का क्या कहना है, अभिमान तो होगा ही। तो भगवान राधा रानी को साथ लेकर के अंतर्धान हो जाते हैं। अब अंतर्धान जब हो गए भगवान तो फिर क्या हुआ, गोपियां भगवान को अब ढूंढ रही हैं, खिन्न हो गई हैं, जैसे हरण को आनंद देख करके हरणी खिन्न होती है और वन वन में ढूंढ रही हैं गोपियां, वृक्षों से पूछ रही हैं, वन देवताओं से पूछ रही हैं, गिरिराज गोवर्धन से पूछ रही हैं कि कृष्ण कहां चले गए हैं। और इस प्रकार से फिर यमुना जी की रेती में गोपियों ने क्या देखा, कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। और कृष्ण के चरण चिन्ह कैसे हैं, वज्र ध्वजा अंकुश से अंकित हैं, तब उन्हीं चरण चिन्हों का अनुसरण करती हुई वे शीघ्रता से आगे बढ़ी। बाद में उन ब्रज सुंदरियों ने उस चरण रज को माथे चढ़ाया और वहां उन्होंने अन्य चरण चिन्ह भी देखे। अब कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ में दूसरे चरण चिन्ह देखे, जब उन्हें देखकर के परस्पर कहने लगी, अब क्या कहती हैं, हे सखियो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण अकेले नहीं गए हैं, अभी तो अपनी प्रीतमा को भी साथ ले गए हैं, ऐसा कहती और उन्हें ढूंढती हुई वे ताल वन में जा पहुंची। उधर ब्रजेश्वरी राधा के साथ जाते हुए ब्रजेंद्र श्री कृष्ण पीछे से गोपियों का कोलाहल सुनकर राधा से बोले, अब गोपियां कृष्ण को ढूंढते हुए आ रही हैं और कृष्ण राधा के साथ तालवन में बैठे हैं, तो राधा रानी से कहते हैं, हे प्रिय यहां से शीघ्र भाग चलो, क्योंकि हमें और तुम्हें लेने के लिए गोपियां पास आ पहुंची हैं। इसके बाद राधा ने श्री कृष्ण का श्रृंगार किया और श्री कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया और फिर भगवान जो है राधा रानी के साथ में विहार करते हैं वृंदावन में, गोवर्धन पर्वत में, यमुना तट पर, नंदीश्वर पर्वत के उच्च शिखर पर, रोहिणी पर्वत पर, बारहों वनों में और समस्त ब्रजमंडल में राधा के साथ विहार करते हुए पुनः वृंदावन के बंसी भट्ट की छाया में आकर विराजमान हो गए। वहां बैठकर श्री कृष्ण ने पीछे से आती हुई गोपियों की आवाज सुनी, तो गोपियों की परंपरा श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से राधा से कहा, क्या कहा, प्रिय चलो जल्दी चलो। उनकी बात सुनकर माननी राधा ने कहा, राधा बोली, हे दीन वत्सल मैं चलने में असमर्थ हूं, क्योंकि कभी घर से बाहर नहीं निकली, अतएव मैं दुर्बल हूं, सो मुझे कंधे पर बिठाकर आप जहां चाहे वहां ले चलिए। न समर्था प्रचर तुम कुचिन गेहान निर्गता नय माम ते मनोयत्र दुर्बलाम दीन वत्सल। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से पंखा करने लगे राधा रानी को, क्योंकि राधा के शरीर में पसीना आ गया था। इसके बाद राधा का हाथ पकड़कर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे ही चलो। भगवान के कहने पर राधा ने अपने को सर्वोत्तम नारी समझ लिया, उन्होंने सोचा कि मैं सबसे अच्छी हूं, तभी तो सब गोपियों को त्याग कर ये रात को मेरे साथ रमण करते हैं, ऐसा समझकर राधा चुप रह गई, फिर वस्त्र से मुंह ढाक लिया और पीठ फेर कर बैठ गई। भगवान को पीठ फेर करके बैठना बड़ा अपराध है ना। श्री कृष्ण का प्रिय चलो मेरे साथ चलो, तुम श्री धामा के साप से कष्ट पा रही हो, इसी से मैं सब गोपियों को त्याग कर तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, यदि तुमसे ना चला जाए तो तुम मेरे कंधे पर बैठकर चलो, मैं तुम्हें एकांत में ले चलूंगा। राधा की यही इच्छा थी, सो ऐसा कहकर भगवान तत्क्षण अंतर्धान हो गए। उनके सहसा अंतर्धान हो जाने पर राधा का सारा अभिमान जाता रहा और अत्यंत व्यथित होकर विलाप करने लगी। अब कृष्ण प्रिया राधा का रोदन सुनकर बंसी भट्ट के निकट अति शीघ्र सभी गोपियां आ पहुंची। राधा को दुखी देखकर गोपियां उन पर पंखे से हवा करने लगी। बाद में बड़े स्नेह के साथ उन्हें केसर के जल से नहलाकर चंदन आदि छिड़कने लगी। स्नापयत्वा तुताम प्रेमणा काश्मीर सलिलेन च त्रिशूर मकरंदताम चंदन द्रव चंदन द्रवशी करे। सेवा कार्य में निपुण गोपियों ने मीठी बातों से उन्हें आश्वस्त किया और मान के कारण श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की बात उनके मुख से सुनकर वे सभी गोपियां बड़े विस्मय में पड़ गईं। फिर मान त्याग कर यमुना तट पर गईं और श्री कृष्ण का पुनः आगमन कराने के लिए बड़े ऊंचे स्वर से उनके गुण गाने लगी। मानिन्यो गोपिका सर्वा विस्मयं परमं ययु विहाय मानं ता सर्वा आगत्य पुलिनं नृप स्वरैर् जगो कृष्ण गुणान् सदागमन हेतवे। अब गोपियां जो है कृष्ण की प्रार्थना करती हैं। गोपियां बोली, हे सखियो अपने ओठों की लाली से मूंगे को तिरस्कृत करने वाले, मधुर बंसी ध्वनि से विनोद करने वाले और कोमल नील कमल के समान मुख वाले गोप कुमार श्री कृष्ण की हम उपासना करती हैं। अधर बिम्ब विडम्बित विद्रुमम मधुर वेणु निनाद विनोदितम कमल कोमल नील मुखाम्बोजम तमपि गोप कुमार मुपास्महे। श्याम सुंदर वन क्रीड़ा के लिए उत्सुक हैं, कोमल कमल पत्र जैसे नेत्रों वाले हैं, कामना पूर्ण करने वाले हैं, ब्रज स्त्रियों के नेत्रों को शीतलता प्रदान करने वाले हैं और बुद्धि हर लेने वाले श्री कृष्ण का हम भजन करती हैं। श्यामलम विपिन केलिलम पटम कोमलम कमल पत्र लोचनम कामदम ब्रज विलास नीदृशाम शीतलम मतिहरम भजामहे। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण की प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि ब्रज बालाओं से घिरे जो श्री कृष्ण रास मंडल में अत्यधिक शोभा बरसाते हैं उन्हीं श्री कृष्ण को राधिका के साथ हम दुखियां खोज रही हैं। हे देव देव, हे ब्रजराज नंदन, हे हरे, हमें अति शीघ्र दर्शन दो और अपनी कृपा दृष्टि से निहार कर पहले के समान हमारे सब दुख दूर करो, क्योंकि हम सब आपकी खरीदी हुई दासियां हैं। देव देव ब्रजराज नंदन देहि दर्शन मलम चनो हरे सर्व दुख हरणम तपूर्वन सन्निरीक्ष तव शुल्क दासिकां। वनमाला पहने, मोर पंख धारण किए, केसर कस्तूरी और अगुरु मिश्रित चंदन का तिलक लगाए, सर्वदा मनोहारणी श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि रूपी अमृत की रसिका लावण्य लक्ष्मीमयी बाल तमाल के समान नील शरीरधारी देवता की हम वंदना करती हैं। मालांबर हिमनोग कुंतल भराम वन्य प्रसूनो सीताम तेले या गुरु क्लिप्त चित्र तिलकाम सत्सुन मनोहारिणी लीला वेणु रमामृत के रसिकाम लावण्य लक्ष्मी मई बालम बाल तमाल नील बबुसम बंदा महे देवताम। तो फिर क्या हुआ, जब इस प्रकार रो रोकर ब्रज वनिताएं भगवान की स्तुति करके उन्हें बुला रही थी, तभी भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों की भक्ति से प्रसन्न होकर तत्काल उनके मध्य प्रकट हो गए। इति स्त्री भी प्रदंती भी रेवती रमणानुज आविर्भूव अचाहूतं तासां मध्ये च भक्तितः। अब भगवान कृष्ण को अपने बीच में देखकर वे सभी गोपियां हर्षपूर्वक उठ खड़ी हुई और सारा दुख भूलकर उनकी जय जयकार करने लगी। वहां राधा को मूर्छित पड़ी देखकर गोपियों ने प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत करने के लिए अपनी बंसी बजाई। राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं, तो गोपियां तो उठ खड़ी हुई, ये राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं, बंसी बजाते हैं राधा रानी को सचेत करने के लिए। तब भी राधा नहीं उठी तो राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने बारम्बार उन्हें वेणु गीत सुनाया। सो सुनकर राधा उठी, वेणु गीत सुनकर के राधा उठी, लेकिन फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण के वियोग का दुख स्मरण आते ही वे भगवान के देखते देखते पुनः मूर्छित हो गई। पहले का जो दुख है उनको याद आया तो फिर से मूर्छित हो गई। फिर भगवान कृष्ण के वेणु गीत से प्रसन्न चंद्रानना नाम की सखी चंद्रावली से बोली। चंद्रानना ने कहा, हे राधे, तुम्हारे मान से रूठकर जो श्री कृष्ण चले गए थे, जैसे एक युग के बाद वे पुनः आ गए हैं, सभी क्लेशों का नाश करते हुए उन्हें देवकी नंदन ने तुम्हारे पास बंसी बजाई है। कृष्ण चंद्र पुरा निर्गतो मानतु यागता सोपि राधे युगान्ते पुनः नाशयन् सर्व दुःखान् ते सन्निधौ संजगो वेणुना देवकी नंदनः। मृतंग का छुंग छुंग शब्द हो रहा है और रासलीला के आंगन में देवांगनाओं से सेवित देवकी नंदन ने ही बंसी बजाई है।
छुंग छुंगे निनाद मृदंगे कलम वाद माने सुर स्त्री जने सेविता रास रम्यम गणे नृत्य किन माधवा संजगो वेणुना देव के नंदना।
सोने के समान चमचमाता पीतांबर पहने भगवान और वैजयंती माला के भार से जिनका वक्षस्थल शोभित है, ऐसे भगवान ने नंद के वृंदावन में गोपियों के मध्य वेणु गान किया है।
चारु चामी करा भासी वासा विभुर वैजयंती भरा भासी तो रस्थला नंद वृंदावने गोपिका मध्य गा संजगो वेणुना देव की नंदना।
सुंदरी चंद्रावली के नयनों से चुंबित गोपों गोपियों और गौओं के प्यारे कंस के वंश रूपी वन को भस्म करने वाले देवकी नंदन ने बंसी बजाई है।
चारु चंद्रावली लोचना चुंबितो गोपवृंद गोप गोवृंद गोपालिका वल्लभा कंस वंशा टवे दाह दावानला संजगो वेणुना देव के नंदना।
बालिकाओं की तालियों की ताल लीला में आसक्त होकर जिन्होंने अपनी भ्रूलता का विभ्रम भली भांति दिखाया है और गोपियों के गीत पर जिनका ध्यान लगा हुआ है, उन देवकी नंदन ने वेणु गीत का गान किया है।
बालिका ताल लालालया संग संदर्शित भ्रूलता विभ्रम गोपिका गीत दत्ता बधाना स्वयं संजगो वेणुना देव की नंदना।
किरीट बाजूबंद किंकनी और कुंडल से विभूषित सुंदर नंद नंदन ने सबको आनंदित करते हुए तुम्हें प्रसन्न करने के लिए वेणु गान किया है।
मौली माला अंगदे किंकणी कुंडलेर भूषितो नंदनो नंद राजस्य च प्रीतिकृत सुंदरो देवी प्रीत्या तव संजगो वेणुना देव की नंदना।
जिन राधा रमण ने पारिजात वृक्ष उखाड़ कर सत्यभामा के आंगन में रोपा, उन गोपियों के समूह और देवांगनाओं के काम पूरक देवकी नंदन ने वेणु गीत गाया है।
पारिजातम समुद्रित राधा वरु रोपया मास भामा भया जंगने वल्लवी वृंद वृंदारिका कामुका संजगो वेणुना देव की नंदना।
जिन्होंने ऋक्षराज जामवान को पराजित करके शमंतक मणि प्राप्त की और उसे राजा उग्रसेन को प्रदान किया, उन्हीं देवकी नंदन ने वेणु गीत गाया है।
ऋक्षराजम विनिर्जित नीत्वा मणि संदो बीते वन भूमि नाताए चौबिरासे समागत राते स्वरो संजगो वेणुना देव की नंदना।
इस प्रकार श्री कृष्ण की महिमा सुनकर प्रसन्न मन से राधा उठ खड़ी हुई और श्री कृष्ण के शरीर से लिपट गई। तब वृंदावन के स्वामी गोविंद वृंदावन के वृक्षों को निहारते हुए वृंदावन निवासिनी राधा के साथ भ्रमण करने लगे। सहसा समस्त ब्रजवालाओं ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया, जैसे बिजलियां मेघ को पकड़ लेती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गोपियां थीं उतने अपने रूप बनाकर उनके साथ यमुना जी के तट पर गए। इससे श्रुतियों के समान सभी गोपियां बहुत प्रसन्न हुई और भगवान को बैठने के लिए उन्होंने अपने वस्त्रों से आसन बनाया। तब गोपियों की भक्ति से प्रसन्न राधा रमण श्री कृष्ण राधा के साथ उस आसन पर बैठे। तब भगवान ने उन्हें अपना वह रूप दिखाया जो त्रैलोक के मोहन रूप गोलोक में रहता है। गोकुल के चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण के उस परम अद्भुत रूप को देखकर गोपियां ब्रह्मानंद में निमग्न हो गई, अतः वे अपने आप को भी नहीं जान सकी कि हम कौन हैं। कुछ देर स्थल पर विहार करके गोपियों की भक्ति के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण ने राधिका और गोपियों के साथ जल विहार करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश किया। जैसे अप्सराओं के साथ इंद्र स्वर्ग की मंदाकिनी में जल विहार करते हैं, वैसे भगवान कृष्ण सब गोपियों के साथ यमुना जी में जल विहार करने लगे। विहार के समय माधव राधिका पर और राधा माधव पर जल्दी जल्दी जल के छींटे डालने लगी। उस समय राधा के जोड़े और भगवान के केश पास से गिरे विविध रंग के फूलों से यमुना जी बड़ी सुशोभित होने लगी। उस समय विद्याधरियों और देवांगनाओं ने उन पर फूल बरसाए। उस समय उनका कटिबंधन वस्त्र खुल गया और वे कामातुरा हो उठी। फिर जल विहार से निवृत्त होकर वे जल से बाहर निकले और वहां से गोवर्धन पर्वत की ओर चले। सभी उनकी सहचरी गोपियां भी उनके पीछे पीछे चली। उनमें से कोई सखी हाथ में पंखा लिए थी और कोई चमर चला रही थी, कोई तांबूल, कोई दर्पण, कोई आभूषण और कोई सखी फूलों की झोली लिए थी, कोई चंदन, कोई पूजा पात्र, कोई महावर और कोई सखी कपड़े लिए थी, कोई सखी मृदंग और कोई मुरज और कोई सखी हाथ में वीणा लिए थी, कोई सखी हाथ में खड़ताल लिए थी और कोई गान गा रही थी। उस समय ऐसा मालूम होता था कि छह राग और 3600 नागिनियां ब्रज बालाओं का रूप धारण करके वहां उतर आई हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास मंडल को देखकर सभी देवता और देवांगनाएं काम पीड़ित होकर मूर्छित हो गईं। चंद्रमा की चांदनी में चंचल श्री कृष्ण चंद्रवाली के साथ चलते हुए बिजलियों के मेघ के समान दिख रहे थे। चंद्रिकायाम तु चंद्रस्य चतुरश्चंचल चलन चंद्रावल्या बभाशैव घनश्चंचल एव चां। उसी गोवर्धन पर्वत पर उन्होंने माला, महावर, काजल और कमल की पंखुड़ियों से राधा का श्रृंगार किया। उसी तरह राधा ने भी केसर, अगर, कस्तूरी, चंदन और कमल पुष्प से श्री कृष्ण के मुख का श्रृंगार किया। फिर मुस्काती हुई राधा ने मुस्काते हुए श्री कृष्ण के मुख में पान का बीड़ा दिया। प्रीतमा राधा के बीड़े को भगवान खा गए और कृष्ण के दिए बीड़े को राधा बड़े हर्ष से खा गई। सती और पति परायणा राधा ने श्री कृष्ण के चबाए पान को लेकर भक्ति पूर्वक खा लिया। जब भगवान ने राधा के चबाए हुए पान की मांग की तब भयभीत राधा ने वो नहीं लिया और उनके चरणों पर गिर गई। पद्मा, पद्मावती, नंदी, आनंदी, चंद्रावती, चंद्रकला और वंद्या ये भगवान कृष्ण की प्रिय सखियां थीं। बसंत ऋतु से परिपूर्ण वृंदावन में श्री कृष्ण ने कामदेव के समान नाना प्रकार के श्रृंगार किए। कुछ गोपियों ने श्री कृष्ण के अधरामृत का पान किया, कुछ ने भुजाओं में भरकर दृढ़ आलिंगन किया। गोपियों के स्तन पर लगा केसर छूटकर भगवान के शरीर में लग गया, जिससे वे सुवर्ण वर्ण के होकर शोभित हुए। फिर गोपीजन वल्लभ कृष्ण ने कदली वन में गोपियों के साथ रास किया। इस प्रकार रास करके श्री कृष्ण नंद जी के घर गए। रास संपन्न हो जाने पर राधा वृष भानु के घर गईं, बाकी गोपियां अपने अपने घर चली गईं। अधनंदस्य सदनम रासम कृत्वा ययो हरि वृषभानुपुरम राधा तथा गोप्यो गृहान्ययुः। व्रत की गोपों को इस रासलीला की खबर भी नहीं हुई, क्योंकि गोपों ने अपनी अपनी पत्नियों को अपने पास ही विद्यमान समझ लिया था। राधा माधव के इस श्रृंगार चरित को जो लोग पढ़ते या सुनते हैं वे अंत में अक्षरधाम को प्राप्त करते हैं। न जानन्ति ब्रजे गोपा रासवार्तां हरेरपि स्वान् स्वान् दारान् स्वपार्श्वस्थान् मन्यमानान् नृपेश्वरे। इदं शृङ्गारचरितं राधा माधवयो परं ये पठन्ति च शृण्वन्ति ते ब्रजिष्यन्ति चाक्षरम्। तो यहाँ महात्म बताया गया है जो राधा माधव का जो श्रृंगार चरित्र है, जो पढ़ता है और जो सुनता है, उससे क्या प्राप्त होता है? अक्षरधाम यानी गुरु धाम की प्राप्ति होती है। तो ये दिव्य लीला है
भगवान की रास मंडल में।
तो यहाँ पर एक बात समझना है कि राधा रानी का नाम इस कथा में कई बार चंद्रावली आया है, तो ये चंद्रावली जो है ना राधा रानी का ही नाम है, लेकिन वैसे चंद्रावली नाम की एक अलग गोपी है जो राधा रानी की कौन है, प्रतियोगिनी। तो फिर राधा रानी के जो 16 नाम ब्रह्म विवर्त पुराण में बताए गए हैं, तो इनकी चर्चा में करना चाहूंगा। तो सबसे पहला नाम है राधा। तो राधा में दो अक्षर हैं, रा और धा। रा का मतलब है देने वाली और धा का मतलब है धाम। तो जो परम धाम गोलोक धाम देने वाली हैं वो राधा रानी हैं। दूसरा नाम राधा रानी का है राधेश्वरी। तो राधेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी पत्नी होने के कारण इनका नाम है राधेश्वरी। तीसरा नाम राधा रानी का है रासवासिनी। तो इसका मतलब ये है कि उनका रास मंडल में निवास है, इसलिए रासवासिनी कहलाती हैं। चौथा नाम है इनका रसिकेश्वरी। इसका मतलब ये है कि जो रसिक देवियां हैं जितनी, उन सब की परमेश्वरी हैं, इसे रसिकेश्वरी कहा जाता है। पांचवा नाम है राधा रानी का कृष्ण प्राणाधिका। तो इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण के लिए ये प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हैं। तो साक्षात कृष्ण ने ही इनको नाम दिया, क्या, कृष्ण प्राणाधिका। तो छठवां नाम है राधा रानी का कृष्ण प्रिया। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण इनको सदा प्रिय हैं, इसलिए कृष्ण प्रिया इनका नाम है। फिर सातवां है कृष्ण स्वरूपिणी। कृष्ण स्वरूपिणी का मतलब ये है कि श्री कृष्ण को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं और सभी अंशों में श्री कृष्ण के समान हैं, इसलिए श्री कृष्ण स्वरूपिणी कही जाती हैं। तो आठवां नाम है राधा रानी का कृष्ण वामांग संभूता। इसका मतलब क्या है, परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, अतः श्री कृष्ण ने ही इनको ये नाम दिया है, क्या, कृष्ण वामांग संभूता। फिर नवा नाम है राधा रानी का परमानंद रूपिणी। इसका मतलब क्या है कि सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि हैं, इसलिए ये नाम वेदों ने दिया है इनको, परमानंद रूपिणी। अब दसवां नाम है राधा रानी का कृष्णा। तो इसमें तीन अक्षर हैं, एक तो कृष्ण, कृष्ण का मतलब है मोक्ष, और अणा का मतलब है उत्कृष्ट, और आ बाद में आ होता है, तो ये देने वाली है, इसका मतलब उत्कृष्ट मोक्ष देने वाली है, तो इसलिए इनको कहा गया है कृष्णा। अब ग्यारहवां नाम है इनका वृंदावनी। तो वृंदावनी का मतलब क्या है कि वृंदावन इन्हीं का है, इसलिए वृंदावनी कही जाती हैं, या वृंदावनी का मतलब वृंदावन की अधिदेवी हैं। अब बारहवां नाम है इनका वृंदा। तो वृंद का मतलब क्या है, समूह है। तो सखियां, समूह की समूह सखियां इनके साथ रहती हैं, इसलिए इनको कहा गया है वृंदा। अब तेरहवां नाम है वृंदावन विनोदिनी। ये नाम इनको वेदों से प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन्हें सदा वृंदावन में ही विनोद प्राप्त होता है, इसलिए इनको कहा जाता है वृंदावन विनोदिनी। अब चौदहवां नाम इनका है चंद्रावली, और ये नाम इन्हें श्री कृष्ण ने दिया है। इसका मतलब क्या है, इनके शरीर में कई चंद्रमा हैं, उनके जितने भी नाखून हैं ये सब चंद्रमा हैं, उनका मुख भी चंद्रमा है, तो चंद्रमा की पंक्ति से हमेशा ये सजी रहती हैं, इस कारण से इनको चंद्रावली नाम भगवान कृष्ण ने दिया है। फिर पंद्रहवा नाम है इनका चंद्रकांता। ये भी नाम भगवान कृष्ण ने दिया है, और हर्ष उल्लास के साथ इनको नाम दिया चंद्रकांता। इसका मतलब क्या है, इनकी कांति दिन रात सदा चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है। फिर सोलवा नाम है इनका शरद चंद्र प्रभानना। इसका मतलब क्या है कि इनके मुख पर दिन रात शरद काल के चंद्रमा जैसी प्रभा फैली रहती है, इसलिए ये नाम विशेष रूप से इनको दिया है मुनियों ने। अब ये जो 16 नाम है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म विवर्त पुराण में ये 16 नाम आते हैं, और जो नारायण ऋषि हैं ये 16 नाम बताते हैं नारद जी को, और नारायण ऋषि ने बताया कि ये 16 नाम इनको प्राप्त हुए हैं धर्मदेव से, जो नारायण ऋषि के पिता हैं, और धर्मदेव को ये जो नाम है ये प्राप्त हुए हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा, जो ब्रह्मा जी धर्मदेव के पिता हैं। अब ब्रह्मा जी को किससे प्राप्त हुए ये 16 नाम? भगवान नारायण से प्राप्त हुए, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी ने जन्म लिया था। धन्यवाद श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare 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 Ram Hare Rama